सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत।
हेलो लिसनर्स, स्वागत है आपका वेद व्यास की महाभारत में। आज हम सुनेंगे सीजन 4 का 17th एपिसोड। मैं हूं आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। वेद व्यास की महाभारत में आप सुनते हैं गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित महाभारत कथा। आज के इस एपिसोड में मैं आपको युधिष्ठिर के द्वारा किए गए राजसूय यज्ञ के संकल्प के विषय में बताऊंगी। कथा को आगे बढ़ाने से पहले चलिए लेते हैं एक छोटा सा रीकैप। पिछले एपिसोड में हमने माया सभा के विषय में सुना। मयासुर ने राजा युधिष्ठिर के लिए एक सुंदर और दिव्य सभा का निर्माण किया। सभा के निर्माण के पश्चात राजा युधिष्ठिर ने सभी परिवारजनों के साथ सभी पुण्य कार्य पूर्ण करके अपनी सभा में प्रवेश किया। अब सभा में नारद मुनि का आगमन हुआ है। चलिए जानते हैं कि नारद मुनि इंद्रप्रस्थ किस लिए आए हैं। नारद जी को आया देख युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उनका आदर सत्कार किया, विनय पूर्वक उन्हें उनके योग्य आसन पर बैठाया और विधि पूर्वक उनका पूजन किया। इस प्रकार अपना आदर सत्कार होता देख नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पांडवों से धर्म, काम और अर्थ तीनों के विषय में कई प्रश्न पूछे और उन्हें कई सुंदर और धर्मयुक्त उपदेश भी दिए। नारद मुनि से सभी उपदेश पाने के बाद राजा युधिष्ठिर ने कहा,
देवर्षि, आपने जैसा उपदेश दिया है मैं वैसा ही करूंगा। आपके इस प्रवचन से मेरी प्रज्ञा और भी बढ़ गई है।
माया सभा में बैठे युधिष्ठिर ने नारद मुनि से पूछा,
देवर्षि, आपने तो अनेक प्रकार के लोगों के दर्शन किए होंगे, क्या आपने पहले कहीं ऐसी या इससे अच्छी सभा देखी है? कृपया करके मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूँ।
नारद जी ने उत्तर देते हुए कहा, राजन, जैसी तुम्हारी यह दिव्य सभा है मैंने ऐसी सभा पूरे मनुष्य लोक में कहीं नहीं देखी है। यदि तुम्हारा मन दिव्य सभाओं के विषय में जानने के लिए उत्सुक है तो मैं तुम्हें पितृराज यम, बुद्धिमान वरुण, देवराज इंद्र, कुबेर और ब्रह्मा जी की दिव्य सभाओं के विषय में बताता हूँ। उन सभी दिव्य सभाओं के विषय में युधिष्ठिर को विस्तार से बताने के बाद नारद जी ने युधिष्ठिर को बताया कि राजा युधिष्ठिर की सभा उन सभी दिव्य सभाओं से भी ज्यादा दिव्य है। देवराज इंद्र की सभा का वर्णन करते हुए नारद मुनि ने सभी राजाओं में से केवल राजा हरिश्चंद्र का ही नाम लिया, जिस पर युधिष्ठिर ने उनसे पूछा कि आखिर राजा हरिश्चंद्र ने ऐसे कौन से कर्म किए थे और कौन सी तपस्या की थी कि नारद मुनि ने केवल उनका ही नाम लिया। नारद मुनि ने उत्तर देते हुए कहा, राजन, तुमने जिन राजा के विषय में पूछा है मैं तुम्हें उनकी महात्म्य के विषय में विस्तार से बताता हूँ। एक समय की बात है, इक्ष्वाकु कुल में त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुआ करते थे। वे अयोध्या के स्वामी थे। उनकी पत्नी का नाम था सत्यवती, जो केकय कुल में उत्पन्न हुई थी। उन दोनों के पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र बड़े बलवान और पूरे भूमंडल के स्वामी हुआ करते थे। हर एक राजा उनके अधीन था। उन्होंने एकमात्र स्वर्ण रथ पर बैठकर अपने शस्त्रों के प्रताप से सातों द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी, जिसके बाद उन्होंने राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया और उस यज्ञ को पूर्ण करके उन्होंने सम्राट का पद प्राप्त किया। राजन, जो भी राजा राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं वे इंद्रदेव के साथ आनंद भोगते हैं। मैं तुम्हारे पिता से भी मिलकर आया हूँ, उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने मुझसे कहा, देवर्षि, आप युधिष्ठिर से कहिएगा तुम्हारे भाई तुम्हारी आज्ञा के अधीन है, तुम पूरी पृथ्वी को जीतने में समर्थ हो, तुम राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करो। तुम्हारा यह यज्ञ पूरा करते ही मैं भी देवराज इंद्र के साथ आनंद पूर्वक निवास करूंगा। ऐसा कहकर नारद मुनि ने कहा, राजन, तुम अपने पिता के संकल्प को पूरा करो और इस पूरी पृथ्वी पर राज करो। ऐसा करके तुम भी देवराज इंद्र के लोक में जाओगे। इस यज्ञ में बहुत से विघ्न आने की संभावना रहती है, क्योंकि यज्ञ भंग करने वाले ब्रह्म राक्षस इसमें विघ्न डालने के लिए तैयार रहते हैं और इस यज्ञ का अनुष्ठान करने से
पृथ्वी पर युद्ध होने के आसार बढ़ जाते हैं। सभी बातों को ध्यान में रखकर तुम्हें जो उचित लगे तुम वही करो, तुम्हारा कल्याण हो राजन। इस प्रकार युधिष्ठिर का मार्गदर्शन करके नारद मुनि ने द्वारका की ओर जाने का निश्चय किया। नारद जी के जाने के बाद युधिष्ठिर भाइयों के साथ मिलकर राजसूय करने के विषय में विचार करने लगे। सभी बातों पर विचार विमर्श करके राजा युधिष्ठिर का मन यज्ञ के संकल्प में और दृढ़ हो गया। पूरी राजा युधिष्ठिर ने पूरी प्रजा का ऋण माफ कर दिया। धर्मराज आप धन्य हैं, धर्म स्वरूप युधिष्ठिर साधु हैं। उनके राज्य में इसके सिवा कोई बात नहीं सुनाई देती थी। उनका ऐसा व्यवहार देख सारी प्रजा उनके ऊपर पिता के समान भरोसा करने लगी। उनके प्रति द्वेष रखने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था, इसीलिए वे अजात शत्रु के नाम से प्रसिद्ध हुए। महाराज युधिष्ठिर सबको अपनाते, भीमसेन सबकी रक्षा करते, अर्जुन शत्रुओं के संहार में लगे रहते, सहदेव सबको धर्म का उपदेश देते और नकुल स्वभाव से ही सबका मन मोह लेते थे। इससे उनके राज्य के सभी जनपद उन्नतिशील हो गए थे। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर की ख्याति दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। राजा युधिष्ठिर ने उस समय अपने मंत्रियों और भाइयों को बुलाकर उनसे बार बार पूछा, राजसूय यज्ञ के संबंध में आप लोगों की क्या सम्मति है? इस प्रकार पूछे जाने पर सभी मंत्रियों ने एक साथ युधिष्ठिर से कहा, राजसूय यज्ञ पूर्ण करके राजा वरुण के गुणों की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए प्रत्येक नरेश इस यज्ञ के द्वारा सम्राट के समस्त गुणों को पाने की अभिलाषा रखता है। सभी की बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर ने सोचा, केवल अपने ही निश्चय से यज्ञ का आरंभ नहीं किया जा सकता। ऐसा समझकर राजा युधिष्ठिर ने उस कार्य के विषय में पूर्ण निश्चय करने के लिए श्री कृष्ण को ही सब लोगों से उत्तम माना। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के पास शीघ्र ही एक दूत भेजा। वह दूत तेज गति से चलने वाले रथ के द्वारा तुरंत यादवों के यहाँ पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण से द्वारका में ही मिला। उसने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार निवेदन किया, भगवन, धर्मराज युधिष्ठिर, धौम्य और व्यास आदि सभी महर्षि, द्रुपद और विराट आदि नरेशों और अपने समस्त भाइयों के साथ आपके दर्शन करना चाहते हैं। यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर के पास इंद्रप्रस्थ में आए। श्री कृष्ण आते ही राजा युधिष्ठिर से मिले। सभी ने आदर पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया। उनके आसन ग्रहण करने के पश्चात राजा युधिष्ठिर ने कहा, माधव, मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ, परंतु वह केवल चाहने भर से ही पूरा नहीं हो सकता है। मेरा मानना है कि जिस उपाय से इस यज्ञ की पूर्ति हो सकती है वह सब आपको ही ज्ञात है। मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ, लेकिन इसका अंतिम निश्चय मैं आपसे सलाह लेकर ही करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने भी युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने के लिए प्रेरित किया और उन सभी राजाओं के विषय में भी बताया जिन्हें वे बिना युद्ध के प्रेम से ही जीत सकते हैं। इसी के साथ उन्होंने राजा युधिष्ठिर को जरासंध के विषय में भी बताया। उन्होंने कहा कि यदि वे राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं तो उन्हें जरासंध का वध करना होगा। आखिर श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा? वह युधिष्ठिर के यज्ञ में बाधा कैसे होने वाला है, ये जानने के लिए आपको सुनना होगा हमारा अगला एपिसोड। आज के एपिसोड में बस इतना ही।
उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माई सूत्रधार। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियाँ अपने मन पसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।